तेरा अरमान ऑब्सेशन फॉर आस्था। अविनाश का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने गुस्से में सभी सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों की निगरानी में इस तरह से भला आस्था और बाकी सब घर की सारी औरतें कहाँ गायब हो सकती हैं? बोलो, जवाब दो मुझे। अगर तुम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया तो अविनाश रघुवंशी अभी और इसी वक्त तुम लोगों का काम तमाम कर देगा। अविनाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने बहुत सारे पैसे खर्च करके बेस्ट सिक्योरिटी टीम हायर की थी, लेकिन उनकी निगरानी में घर की किसी भी औरत का पता नहीं चल पा रहा था। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी सभी सिक्योरिटी गार्ड इसके बाद दबी हुई और धीमी आवाज में बोले, सर, हमारी कोई गलती नहीं है। जहां जहां आपने हमें तैनात किया था उसी कमरे में हम तैनात थे। उस कमरे से कोई भी बाहर नहीं निकला और ना ही कोई कहीं बाहर गया है। हम पूरी तरह से उसी कमरे के अंदर रहने वाले मेंबर्स के लिए ड्यूटी कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर अविनाश चौंक गया और फिर अरमान की तरफ मुड़ा और गुस्से में दांत भींचकर उससे बोला, अरमान, आखिर तुम्हारे घर में हो क्या रहा है? पहले इस घर में से मेरा भांजा गायब हुआ, उसका कुछ पता नहीं चला, और अब मेरी बहन, नानी माँ, मेरी बीवी, बाकी सबकी बीवियां भी गायब हैं। आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पर? वहीं दादाजी बड़े ही गौर से सारी बातें सुन रहे थे और वो अपना दिल थाम कर बैठे हुए थे। उन्हें भी अब अजीब सा डर सताने लगा था। उन्होंने निराश होकर मन ही मन सोचा कि ना जाने क्या हो गया है मेरे हंसते खेलते परिवार को। वहीं अरमान के लिए अब इस तरह से एक जगह बैठ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अरमान का चेहरा अचानक बदल गया। उसने दांत भींच के और आकाश को घूरते हुए बोला, हम अभी इस वक्त ब्लैक टेबल पर हमला करेंगे, तैयारी करो, तब तक मैं अपना जरूरी हथियार लेकर आता हूँ। ये बोलते हुए अरमान बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। इस बार अरमान का डेविल किंग का अंदाज खुलकर सामने आया था। कहीं ना कहीं अरमान को लगा था कि जिस तरह से अंश को उसी के मेंशन से उठाया गया था, बिल्कुल उसी तरह एक बार फिर घर की औरतों को अगवा कर लिया गया है। इसीलिए अरमान अब ब्लैक डेविल पर हमला करना चाहता था। इसीलिए देर न करते हुए उसने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए थे, क्योंकि वो जो लोगों को मारने के लिए अपना स्पेशल हथियार इस्तेमाल किया करता था, इस वक्त वो हथियार उसी के कमरे में मौजूद है। वहीं अरमान को जाते हुए देखकर अविनाश आंखों में गुस्सा लिए कड़क आवाज में बोला, मिस्टर सिंघानिया, आप ब्लैक डेविल पर हमला करें या फिर किसी देश को मिटा दें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरी बहन सही सलामत चाहिए। एक और बात, आस्था के वापस मिलते ही मैं उसे लेकर ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। अविनाश के शब्द सुनते ही अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर भींच लिया था और वो बिना अविनाश की बात का कोई रिस्पांस किए लंबे लंबे कदम भरता हुआ अपने कमरे की ओर जाने लगा था। वहीं अरमान जैसे ही अपने कमरे के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि उसका दरवाजा लॉक था। ये देखकर अचानक अरमान के माथे पर बल पड़ गए। अगले ही पल उसने दरवाजे को आश्चर्य से देखा, क्योंकि अक्सर वो कुछ जरूरी काम होने पर ही बायोमेट्रिक लॉक का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन आज दरवाजा नॉर्मली अंदर से लॉक था। इसीलिए ये बात उसे एकदम हैरान कर गई और अरमान के चेहरे हाव भाव एकदम से बदल गए। उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी, उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। आहान, उसने थोड़ी ऊंची आवाज में आहान को पुकारा। जैसे ही आहान ने अपना नाम अरमान के मुंह से सुना, वैसे ही वो एकदम से हड़बड़ा गया। आहान के साथ साथ ध्रुव, आकाश, सुमित और अविनाश तुरंत ही सीढ़ियों की ओर एकदम से हैरान होकर देखने लगे और देर न करते हुए वो लोग फटाफट से अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए थे। तभी अरमान ने आहान को आईब्रो उचकाते हुए सवालिया नजरों से घूरा और एकदम से कड़क आवाज में बोला, क्या तुमने मेरे रूम में बायोमेट्रिक लॉक लगाया है या फिर किसी और ने? क्या तुम में से किसी ने यहाँ लॉक के साथ छेड़खानी की है? अरमान के मुंह से ये सवाल सुनते ही वहाँ की हवा जैसे ठहर सी गई। सब लोग कन्फ्यूजन से एक दूसरे की शक्ल नासमझी में देखने लगे थे और सभी ने एक साथ जवाब दिया, नहीं नहीं, हमने तो कोई लॉक वॉक नहीं लगाया। तभी आकाश अचानक बोल पड़ा, अगर हम में से किसी ने लॉक नहीं लगाया तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब साफ है, घर की लेडीज कहीं अंदर तो नहीं। जैसे ही आकाश ने अंदाजा लगाते हुए ये कहा, वैसे ही अविनाश एकदम से बोल पड़ा, आप सभी ने सारे रूम अच्छी तरह से चेक कर लिए थे ना? तभी आहान हाँ में गर्दन हिलाते हुए फट से बोला, हाँ, हमने मेंशन के सभी रूम को अच्छी तरह से चेक कर लिए थे, लेकिन अरमान भाई का रूम हमने चेक नहीं किया था, क्योंकि बेसिकली उस कमरे में कोई नहीं जाता है और अरमान भाई की इजाजत के बिना हम वहाँ नहीं जाते। बस इतना सुनते ही सभी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं दादाजी भी उनके पीछे पीछे अब तक धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए थे और उन सबको बातों में उलझे हुए देखकर वो एकदम से भड़के, अब तुम सब यहीं दरवाजे पर खड़े रहकर सवाल जवाब करते रहोगे या एक बार दरवाजा खोलकर चेक करोगे? आखिर अंदर चल क्या रहा है? क्या वाकई रूम में कोई भी है या नहीं है? हमें तो वैसे ही घबराहट हो रही है। अब दादाजी की बात सुनकर सबने सहमति में सिर हिलाया और अरमान ने तुरंत बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हुए दरवाजा ओपन करने की कोशिश की और जैसे ही उसने दरवाजा ओपन किया तो अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई थी।
क्योंकि वो अरमान का कमरा कम और किसी शादी का मैरिज हॉल ज्यादा लग रहा था। वहां पर फूलों के साथ सजावट की गई थी, हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और सभी लड़कियां वहां पर बेपरवाही से डांस करती हुई नजर आ रही थी और ऊपर से नानी माँ एकदम फिल्मी स्टाइल में वहां बैठी हुई ढोलकी बजा रही थी। ये नजारा देखकर तो उन सबकी आईब्रो एकदम से सिकुड़ गईं और अब सब उन्हें अविश्वास से भरी नजरों से घूरने लगे। वहीं आकाश की नजरें रश्मि पर जाकर ठहर गई थी, सुमित की राधिका पर और ध्रुव की नजरें यहाँ वहाँ वंशिका को तलाशने लगी थी, लेकिन उसे उसकी बीवी कहीं भी दिखाई नहीं दी, इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान हो गया था। वहीं उनकी नजर जैसे ही रौनक पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि रौनक ने रेड कलर की चुन्नी ओढ़ी हुई बैठी थी और उसके सामने कितने सारे फल फ्रूट और मिठाइयाँ साथ ही नारियल वगैरह रखे हुए हैं। ये सिचुएशन देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, इसीलिए उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव भर आए और सबने एक दूसरे को कंधे उचकाते हुए नासमझी में देखा। फिर उन सब लड़कियों को वापस हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं आहान कंफ्यूज होकर उन्हें एकटक देखने लगा और अचानक अगले ही पल उसने दादाजी की तरफ देखकर एकदम से सवाल पूछा, दादाजी ये सब यहाँ क्या हो रहा है? सारे घर की लेडीज तैयार होकर अरमान भाई के रूम में छुपकर शादी कर रही हैं और हमें बुलाया भी नहीं। जैसे ही आहान ने नासमझी में ये सवाल किया तो वैसे ही सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हों। वहीं आहान फिर बात संभालते हुए मुंह बनाकर हंसा और मजाकिया अंदाज में बोला, ओह सॉरी सॉरी, लड़कियों की शादी आपस में ऐसे कैसे हो सकती है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये सब कमरे में गाना बजाकर बेपरवाही से इतना डांस क्यों कर रही हैं और ये इस तरह से एंजॉय कर रही हैं जैसे किसी की बारात में आई हूँ। और अरमान भाई के कमरे को इन लड़कियों ने क्या से क्या बना दिया है, उफ। और सारी लड़कियां कितनी बेखौफ नजर आ रही हैं, किसी को बिल्कुल भी डर नहीं कि अगर अरमान भाई को पता चला तो क्या होगा। वहीं ध्रुव की नजर लगातार इधर उधर वंशिका को ही खोज रही थी।
वहीं अरमान की नजर तो आस्था पर जाकर टिक गई थी। आस्था के बालों में लगे हुए खूबसूरत गजरे को देखते ही उसका गुस्सा पल भर में छूमंतर हो गया था। उसके मन में हल्की सी हलचल होने लगी थी। सभी लड़के जो कि खुद अपनी अपनी बीवियों का मूड ठीक करना चाहते थे, उनके लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज प्लान करना चाहते थे, लेकिन ये देखकर कि उन्होंने अपने लिए ऑलरेडी खुद ही सरप्राइज प्लान कर लिया है तो ये सोचकर सभी के चेहरों पर अपने आप हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं राधिका को देखने के बाद तो सुमित का दिल जोरों से धड़क रहा था। वहीं अविनाश भी चुपके से एंजल को प्यार भरी नजरों से घूरने लगा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने अरमान को ज्यादा ही भला बुरा सुना दिया था, इसलिए वो थोड़ा शर्मिंदा भी हो गया था। ये सिचुएशन किसी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन नानी माँ और सभी लड़कियों को सही सलामत देखकर सबने चैन की सांस ली। वहीं दादाजी तो एक पल में ही पूरी तरह से हल्के फुल्के हो गए थे और जैसे ही दादाजी की नज़र नानी माँ पर पड़ी तो वैसे ही वो अब खुद को रोक नहीं पाए और ठहाके लगाकर हंस पड़े, क्योंकि सारी लड़कियों ने मिलकर नानी माँ के चेहरे पर फुल मेकअप कर दिया था जिसकी वजह से उनका स्टाइल ही चेंज हो गया था। दादाजी को हंसते हुए देखकर सभी लड़कों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था मानो दादाजी को किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। फिलहाल उनका हंसता हुआ चेहरा देखकर सबने चैन की सांस ली। वहीं दूसरी ओर किसी भी लड़की को अपनी मौज मस्ती में इस बात का एहसास नहीं रहा कि इस वक्त लड़कों की पूरी गैंग उन्हें ही तीखी नजरों से घूरकर देख रही है, क्योंकि सबने म्यूजिक तेज कर रखा था और अरमान के रूम से म्यूजिक का शोर बाहर नहीं जा सकता था, तो इसलिए वो इस बात का पूरी तरह से फायदा उठा रही थी और बेपरवाह अंदाज में नाच रही थी। वहीं वंशिका जो कि लड़के के वेश में वहां मौजूद थी, अब उसने बीच बीच में गोल गोल घूमकर सभी लड़कियों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया, कभी आस्था को घुमाता तो कभी रश्मि को, कभी रौनक के माथे को चूम लेता तो कभी उन सब लड़कियों की पतली कमर पर हाथ फेरता। उसके इस तरह छेड़ने से उन सभी लड़कियों को कुछ अलग ही तरह की गुदगुदी हो रही थी। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनके पेट में तितलियां उड़ रही थीं और सभी वंशिका के कैरेक्टर्स पर जोर जोर से हंस भी रही थीं और उसके साथ बेफिक्री से डांस भी कर रही थीं। वहीं वंशिका ने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जैसे ही मैं जेट यमला पगला दीवाना वाला गाना बजा तो वो पूरी तरह से फॉर्म में आ गई थी और एक एक लड़की को घुमा घुमा कर उनके साथ बेपरवाही से डांस कर रही थी। ये सब कुछ बड़ा ही फिल्मी और बड़ा ही मनोरंजक लग रहा था, लेकिन ध्रुव की आंखें बेचैनी से भरी हुई थीं क्योंकि उसे अभी तक उसकी बीवी कहीं भी दिखाई नहीं दी, तो उसे रह रहकर डर सता रहा था कि कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। वंशिका को वहां ना देखकर उसकी आंखें भरने के लिए तैयार थीं। वो सोच रहा था, काश वंशिका भी इन सबके साथ होती तो वो भी इसी तरह से एंजॉय करती। उसका दिल इमोशन से भर आया, लेकिन अब वंशिका की जगह एक लड़के को वहां देखकर सभी लड़कों के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। वहीं आहान ने अपने होंठ भींचे और हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी
और उसने गुस्से में दांत भींच कर कहा, अरमान भाई, आज आप मुझे नहीं रोकेंगे। आज तो मैं अपनी जिंदगी का पहला मर्डर करके ही रहूंगा। आपने देखा नहीं ये लड़का किस तरह से मेरी रौनक को किस कर रहा है, आस्था भाभी को छू रहा है, मेरी सारी भाभियों को नचा नचा कर चांस मार रहा है। मैं अब इसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर आहान चुप हो गया और वंशिका की ओर खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। आहान का चेहरा जम गया, बेचैनी भरी फीलिंग्स उस पर हावी होने लगी थी। उसने गुस्से में सोचा, हमारे घर आकर भला इस तरह से ये लड़का ऐसे कैसे मेरी भाभियों पर हाथ साफ कर सकता है। लेकिन अचानक सभी को वो इंसिडेंट याद आ गया जब एक बार रौनक लड़के के रूप में सभी लड़कियों के साथ घूम घूम कर डांस कर रही थी। लेकिन वंशिका ने तो पूरा इस तरह से गेटअप लिया था कि उसकी बॉडी लड़कों की तरह फिट थी कि जैसे कोई लड़का ही वहां मौजूद हो। लेकिन सब लड़के उसे देखकर तमतमाते हुए सोचने लगे, सिंघानिया मेंशन एक से बढ़कर एक स्मार्ट डैशिंग हैंडसम बॉय भरे पड़े हैं, फिर ये सब इस लड़के को कहां से उठा लेकर आई हैं? अरे घर में आदमियों की कमी है क्या जो इस तरह से उन्होंने बाहर से एक लड़का हायर कर लिया। अब ध्रुव आहान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, यार इनके साथ मेरी वंशिका क्यों नजर नहीं आ रही है। ध्रुव की बात सुनते ही आहान ने ध्रुव की पीठ थपथपाते हुए कहा, हो सकता है वंशिका भाभी किसी काम से बाहर गई हो और तुझे इन्फॉर्म करना भूल गई हो। तो क्यों इतना परेशान हो रहा है यार, फिलहाल हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस मुस्टंडे का हम क्या करें। तुमने देखा नहीं आज इन लड़कियों ने कितनी हिम्मत दिखाई है, अरमान भाई के रूम में एक लड़का हायर कर लिया है और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि मेरी रौनक का किया कराया होगा। जिस तरह से वो खाना ऑनलाइन ऑर्डर करती है, जरूर इस बंदे को भी उसने ऑनलाइन डेटिंग ऐप से ऑर्डर कर लिया होगा और यहाँ बुलाकर इसके साथ मौज मस्ती कर रही है। अब जैसे ही अरमान ने उस बंदे को गुस्से भरी आंखों से एकटक देखना शुरू किया तो वैसे ही अरमान की आंखें एकदम से सख्त हो गईं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं वंशिका जो लड़के के रूप में वहां मौजूद थी वो कहीं से भी लड़की नहीं लग रही थी। उसने पूरा गेटअप लड़कों जैसा लिया था, इसीलिए अब अरमान का ध्यान भी अब सिर्फ उसके हाथ पर था जिस हाथ से वंशिका ने आस्था यानी उसकी खूबसूरत सी पत्नी को छुआ था। अब ये देखकर अरमान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। अब जैसे ही बाकी सबका ध्यान अरमान पर गया तो वैसे ही वो सब एक पल के लिए ठिठक गए और थोड़ा सा परेशान होकर उसे गौर से देखने लगे। लेकिन आज वो उसे रोकना भी नहीं चाहते थे, वो तो खुद चाहते थे कि अरमान आज इस मुस्टंडे को सबक सिखाने में अपना पूरा डेविल किंग वाला रूप दिखा दे। कम से कम तब जाकर उन लोगों के दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि वंशिका लड़का बनकर राधिका, रश्मि, एंजल, आस्था सभी लड़कियों पर अच्छा खासा हाथ साफ कर रही थी। तो ये देखकर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बिगड़ रहे थे। अरमान अब खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वंशिका आस्था के पास घूम कर आई और एक बार फिर उसने आस्था को गले से लगाकर डांस करते हुए उसके गालों पर किस किया और उसकी पतली कमर को भी छू लिया। तो दोस्तों किसी का कमेंट था कि स्टोरी ज्यादा खिंच रही है, बट दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने इसका सेकंड सेशन शुरू किया है आप लोगों के लिए, सो मुझे थोड़े से कैरेक्टर तो ऐड करने पड़ेंगे ना स्टोरी को आगे ले जाने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कहीं भी स्टोरी बोर ना हो। बस हाँ, स्टोरी में आपको हॉट रोमांटिक ये सब सीन थोड़े कम मिलेंगे, होप आप लोग एडजस्ट कर लोगे। प्लीज सपोर्ट करें और अपना साथ बनाए रखें।